समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। और डेडलाइन में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello Manoj, hello and good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Manoj. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
Pradhan Mantri Narendra Modi ne Prayagraj Mahakumbh ki ghatna ko behad dukhad bataya. उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अर्जेस पीपल नॉट टू पे अटेंशन टू रूमर्स। मौनी अमावस्या अमृत स्नान अंडरवे स्मूथली एट प्रयागराज।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन के साथ अपनी मसौदा रिपोर्ट को अपनाया।
Congress releases election manifesto for Delhi Assembly election.
Beating retreat समारोह आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया जाएगा।
And in ICC, Chief Executive Jeff Allardyce to step down amid concerns over Pakistan's readiness to host Champions Trophy 2025. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Indian Newspaper Day and Beating Retreat, that is 29th of January 2025. So to begin our discussion today, let's begin with the words of Arthur Salzberg Jr., who said, "Newspapers cannot be defined by the second world paper. They have got to be defined by the first world news." Well, interesting thought there, Manoj, isn't it?
जी, आर्थर मिलर भी अखबार को लेकर के कहते हैं, एक अच्छा अखबार वो राष्ट्र होता है जो खुद से बात करता है। आप उठें और आंखें खोलें, चाय या कॉफी का कप उठाएं और फिर अखबार का बंडल उठाएं। इस तरह आप अपने दिन की एक शानदार और सहज शुरुआत की कल्पना करते हैं, है ना? कई लोगों के लिए एक समाचार पत्र हर दिन की शुरुआत निर्धारित करता है।
Yes, and what is the first thing that arrives in a home every day? Well, you guessed it right. It is a newspaper that reaches our doorstep with the latest news of the entire world. It is the strongest tool of mass communication used to circulate information among the common people to let everyone know about a situation or event. Newspapers also readily available in even the most rural of areas. And January 29th is observed every year in India as the Indian Newspaper Day, commemorating the introduction of the first newspaper in the pre-independence era in 1780.
समाचार पत्र ज्ञान पहुंचाने और कई लोगों से संवाद करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। जागरूकता फैलाने के लिए इस माध्यम का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। समाचार पत्र सांसारिक मुद्दों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का सबसे सस्ता तरीका है। ये जानकारी का सर्वोत्तम स्रोत भी है। समाचारों की दैनिक खुराक हमें सुबह सबसे पहले समाचार पत्रों से मिलती है। ये एक भरोसेमंद स्रोत है जो कड़ी जांच के बाद ही हमें जानकारी प्रदान करता है।
Yes, absolutely, Manoj. And this day aims to promote newspapers by encouraging people to read newspapers every day. And this day is a tribute to the invaluable role newspapers play in shaping society. In the pages of newspapers, the voice of the people comes alive. And the day marks the publication of India's first newspaper, the Bengal Gazette, by James Augustus Hickey in 1780.
और अभिषेक, एक समाचार पत्र स्थानीय भाषा में मुद्रित किया जाता है ताकि वो अधिकतम लोगों तक पहुंच सके और स्थानीय या वैश्विक स्तर पर होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता फैला सके। अकेले भारत में 1,00,000 से अधिक प्रकाशन पंजीकृत हैं। कल्पना कीजिए, हमारे देश में आपको कुल कितने समाचार पत्र के पाठक मिलेंगे। ये एक उत्कृष्ट उपकरण है जिसमें अपार शक्ति है। ये समाचार पत्र पढ़ने वाली जनता की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है।
Yes, sir. Before we proceed further, Manoj, I'd like to ask you a question. Do you have the habit of reading newspapers daily in the morning?
जी हाँ, अभिषेक, मैं कहा जाए तो अभिषेक समाचार पत्र पढ़ने का मैं कीड़ा हूँ।
Okay. So what do you read? Do you read the physical version or the digital version? Because these days we see that the digital versions are very much in vogue, हाँ. and the younger generation are more attuned to the digital versions.
हाँ जी हाँ जी हाँ. तो अभिषेक, मैं यहाँ पर जो है दिल्ली में मैं हिंदी को अखबार खरीद कर पढ़ता हूँ और डिजिटल वर्जन जो स्थानीय भाषा का भी मैंने जिक्र किया, तो बांग्ला भाषा का अखबार मैं डिजिटली पढ़ता हूँ।
Okay, so do you think the newspaper that is the physical version faces a threat as such in today's times?
नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता अभिषेक, मुझे तो अखबार खरीद कर देख कर पढ़ने में ज्यादा
रीडिंग रीडिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन इज आल्सो गॉन डाउन इज़न्ट इट?
जी जी, ये अपनी अपनी आदत होती है अभिषेक, किस तरह
because we generally find that people who the students who are into the preparing for their civil service exams and the other government officials, they are the ones who are generally reading the newspapers, isn't it?
उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अखबार पढ़ने के लिए सबसे सस्ता माध्यम है डिजिटल।
Absolutely, and this day is a celebration of the rich heritage and the continuing importance of the print media industry in India, and the day is dedicated to honoring the first publication of a newspaper in the country and acknowledging the important role newspapers play in shaping public opinion and promoting literacy.
जी हाँ, भारतीय समाचार पत्र दिवस की जड़ें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खोजी जा सकती है, जब जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को पहला समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट प्रकाशित किया था। इसने भारत में प्रिंट पत्रकारिता की शुरुआत को चिन्हित किया, जो बाद में संचार एवं अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में एक शक्तिशाली पत्रकारिता के रूप में विकसित हुई।
Absolutely, and when we look back, Manoj, during the freedom struggle, newspapers played a vital role in mobilizing public opinion against the British rule. And leading newspapers such as the Hindu, the Times of India, and the Amrita Bazar Patrika became instruments of social and political awakening, bringing the voices of leaders and revolutionaries to the masses. And some of these papers are also still very popular till today, isn't it?
जी हाँ, भारत में एक विविध और जीवंत प्रिंट मीडिया परिदृश्य है, जिसमें कई भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। ये विविधता देश की भाषाई और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। भारत दुनिया के कुछ सबसे अधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों का घर है। दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे शीर्षक प्रतिदिन लाखों पाठकों तक पहुंचते हैं, जो प्रिंट मीडिया के व्यापक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं।
So you mentioned papers like the Times of India and Hindustan Times, Manoj.
Times of India.
If I may ask you, what is the thing that attracts you to the Times of India? For instance, the paper Times of India.
ऐसा है,
do you read the sports page or the editorial page or what is it? That
मुझे अभिषेक, मैं बताऊं तो मैं ESD हिंदी सर्विस से जुड़ा हुआ था, तो ESD हिंदी सर्विस में विदेशी समाचार की ज्यादा अहमियत थी, तो मैं सबसे पहले विदेशी न्यूज़ पढ़ता हूँ।
Absolutely, and I'd like to add the speaking tree column of the Times of India newspaper is very attractive and informative, and I like reading that column, isn't it? Well, newspapers play a vital role in India's democracy by holding those in power accountable promoting transparency and providing a platform for public discussion. Mm-hmm. Investigative journalism has been the cornerstone of the press, highlighting important issues and promoting social change. However, the print media industry faces challenges such as declining readership, competition from digital media, and financial pressures. However, opportunities lie in digital integration, innovative content delivery, and leveraging multimedia platforms to reach a wider audience.
डिजिटल मीडिया के उदय ने लोगों के समाचार उपभोग के तरीकों को बदल दिया है. अभिषेक, हमने बातचीत की इस विषय पर अभी. समाचार पत्र विश्वसनीय पत्रकारिता की आधारशिला बने हुए हैं. भारतीय समाचार पत्र दिवस गहन विश्लेषण, तथ्य आधारित रिपोर्टिंग और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने में समाचार पत्रों के महत्व की याद दिलाता है.
Yes, absolutely. And in today's digital age, where information is often consumed in bite-sized formats, Indian Newspaper Day encourages a return to the roots of in-depth reading. It emphasizes the enduring relevance of newspapers in fostering informed decision-making, citizen empowerment, and the sustenance of India's democracy.
जी हाँ, ये दिन व्यक्तियों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत को फिर से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें आलोचनात्मक सोच और सूचित नागरिकता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर जोर दिया जाता है. डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा के बावजूद समाचार पत्र भारत के मीडिया परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान बनाए हुए है. तो यहाँ आपका संकेत है कि आप जाएं और अपना अखबार उठाएं.
Yes, and the significance of Indian Newspaper Day lies in the celebration of the lasting impact of print media. And despite the advent of digital news, like we were discussing, Manoj, mm-hmm. newspapers continue to be a reliable source of information mm-hmm. for millions of readers across India.
Mm-hmm.
And
ये दिन भारत में प्रिंट मीडिया की ऐतिहासिक यात्रा का स्मरण कराता है. ये उन अग्रदूतों का सम्मान करता है जिन्होंने पत्रकारिता की नींव रखी और भारत के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में समाचार पत्रों की भूमिका निभाई.
Yes, and so to wind up a very illuminating discussion on India, Indian Newspaper Day, Manoj. In a nutshell, we can easily conclude that newspapers has immense significance in our lives, from gaining information to solving puzzles, laughing at the jokes and cartoons, to sharing our emotions with an event. We find it as an important element of the day, and we'll have more details about the history related to this day in our Azadi Ka Safar segment.
जी हाँ, नील किन्नौक कहते हैं, समाचार पत्र शिक्षक होने के साथ साथ मुखबिर भी होते हैं. आइए भारतीय समाचार पत्र दिवस पर पत्रकारों के समर्पण और समाचार पत्रों की स्थायी विरासत का सम्मान करें.
So to conclude, here's to the power of newspapers in shaping opinions and strengthening democracy. Happy Indian Newspaper Day 2025. Well, now moving on to our second topic in a Dateline section, Manoj. Uh-huh. That is the beating retreat.
Beating retreat.
In the majestic backdrop of a setting sun over the Raisina Hills, the iconic Vijay Chowk is set to immerse in the melodies of Indian tunes during the beating retreat ceremony, marking the culmination of the 76th Republic Day celebrations today.
बीटिंग रिट्रीट समारोह हर साल गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है. ये समारोह भारत के सशस्त्र बलों के समन्वय और अनुशासन को प्रदर्शित करता है.
Yes, and this the event is a tribute to the bravery and sacrifices of Indian soldiers. The combination of Western and Indian martial tunes represents the blend of traditions in India's military history.
ये समारोह औपचारिक रूप से बड़े धूमधाम और शो के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है.
Yes, Manojan, beating retreat ceremony will be held at the Vijay Chowk in New Delhi in some time from now. President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, and other union ministers will be present on the occasion. We have more from a correspondent.
This year, in the Beating Retreat ceremony, a total of 30 performances will captivate the spectators with foot-tapping music of bands from the Army, Navy, Air Force and the Central Armed Police Forces. The ceremony will commence with the iconic Kadam Kadam Badhaye Ja tune, followed by the enthralling tunes such as Amar Bharti, Indradhanush, Jai Janam Bhumi and Veer Siya Chen by the Pipes and Drums Band. The event will come to a close with the popular tune of Sare Jahan Se Achha to be played by the Burglars. Sumit Saha, Akashvani News, Delhi.
Thank you.
नई दिल्ली के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में भी आज शाम बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
बीटिंग रिट्रीट में सेना, नौसेना और पुलिस के बैंड प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बीटिंग रिट्रीट के अवसर पर आज भारतीय नौसेना तटरक्षक और जहाजरानी निदेशालय के जलयानों को रोशनी से सजाया जाएगा। यह रोशनी शाम 5:45 से रात 10 तक मरीन फ्लैग पोस्ट पर की जाएगी। आज होने वाले बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम को देखते हुए शहर में यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। समाचार परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
The World Economic Forum held recently in Davos has recognized that Kerala Green Hydrogen Valley project as one of the 13 leading global industrial clusters for its decarbonizing efforts. We have a report.
The Kerala Green Hydrogen Valley project, spearheaded by the Agency for New and Renewable Energy Research and Technology, ANERT, envisions a fully integrated hydrogen ecosystem that addresses climate challenges while driving sustainable economic growth. Hydrogen valleys are defined geographic areas where hydrogen applications, production, storage, distribution and utilization are integrated into a unified ecosystem. This allows for economies of scale and fosters collaboration among producers, consumers and infrastructure developers. Kerala's Hydrogen Valley project is designed to reduce carbon emissions across critical sectors, particularly transportation, which accounts for nearly 50% of the state's annual carbon dioxide emissions. The state's efforts are well aligned with India's National Green Hydrogen Mission, which aims to produce 5 million tons of green hydrogen annually by 2030. The Kerala State Industries Minister P. Rajiv, who was part of the Indian delegation to World Economic Forum, said that the project was much appreciated in the forum. The project is evaluated proposals worth $1.2 billion. The minister further added that the visit to Davos was a success. Around 70 one-to-one meetings with investors were held. Mayusha for Parikrama from Tiruvananthapuram.
पश्चिमी कमान ने हरियाणा के पंचकुला में चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका और योगदान पर एक सेमिनार आयोजित किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार की अध्यक्षता में सेमिनार ने महिला अधिकारियों को कार्य जीवन संतुलन, करियर की प्रगति और नेतृत्व शैलियों सहित सेना में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास।
The seminar also highlighted the importance of enhancing mentorship programs, reviewing deployment policies, and investing in infrastructure to support women officers and soldiers. Lieutenant General Kattiyar reaffirmed the Indian Army's commitment to gender inclusivity, citing initiatives such as leadership training, gender sensitization workshops, and recruitment drives aimed at increasing women representation. The Army commander underlined the crucial role of commanding officers in grooming their command and maintaining a balanced between aspirations and tasks. He expressed satisfaction at the spirit and enthusiasm of women officers in the command, standing shoulder to shoulder with their male counterparts. He emphasized the importance of being physically strong, mentally alert, and morally straight for the men and women in uniform to make the Indian Army a better organization. For Parikrama, this is Rajesh Bali from Jalandhar.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Late 18th century witnessed the beginning of press in British India when the first English language newspaper, Bengal Gazette, was published in Kolkata on the 29th of January 1780. It was an Irish gentleman, James Augustus Hickey, who started publishing Bengal Gazette, a weekly newspaper which was also known as Calcutta General Advertiser. This was the first editorial effort in India to expose the corruption of the British government. Its slogan was, open to all, but influenced by none. People were greatly inspired by Hickey's brave attitude for revealing truth.
Soon thereafter, some employees of the British East India Company also started a newspaper named India Gazette. Thus, when the rival newspaper India Gazette was published on the same day, Hickey changed the name of this newspaper to Hickey's Bengal Gazette.
Hickey's Bengal Gazette was a strong critic of the colonial administration. He fought against Governor General Hastings' corruption. He raised his voice for Indian sepoys. Articles about the Bengali poor were common in his newspaper. As a reply to this, Warren Hastings ordered the seizure of the printing press of the Bengal Gazette, and it ceased publication on the 30th of March 1782.
दिल पे ना कुछ गम रहे हर घड़ी हर लहजा यार सीने से बाहम रहे.
We also remember Fazil Muhammad Khan and his associates who attained martyrdom on 29th of January 1858. Fazil Muhammad Khan and Adil Muhammad Khan of Bhopal were landlords who became one of the chief rebel leaders in the Central India region during the revolt of 1857. After being inspired by Fazil Muhammad and Adil Muhammad, many soldiers of the nearby princely states plunged into the War of Independence.
During the revolt of 1857, sepoys of the Bhopal states who revolted against the British wanted to have control over the neighboring region of Sagar, and the fort of Rahatgarh was the doorway to Sagar. However, Bhopal Nawab Begum Sikandar Jahan was against these sepoys and wanted to crush the mutiny. Thus, the army of Bhopal state and the army of Fazil Muhammad Khan had a fierce battle at Rajgadi in July 1857, in which sepoys won. The sepoys then helped drive away the British from adjoining areas and also took over the fort of Rahatgarh.
To control the sepoys, the British government then sent an army brigade from Mahu to Rahatgarh in January 1858. The British regiment was led by General Hugh Gross. The army of Bhopal Sikandar Begum was also supporting the British. On January the 25th, 1858, the British stormed the fort.
Hundreds of sepoys were martyred in the battle. Adil Muhammad Khan managed to escape and later remained in many revolutionary campaigns with Tatya Tope. Fazil Muhammad Khan was caught and was hanged at the door of the fort with other revolutionaries on January the 29th, 1858. We pay tributes to the brave sons of the soil.
In business news today, benchmark domestic equity indices today extended gains for the second consecutive session. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 631 points or 0.83% to close at 76,533. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 gained 206 points or 0.9% to settle at 23,163.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. गुवाहाटी में इंडियन सुपर लीग में आज शाम 7:30 बजे इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का मुकाबला हैदराबाद फुटबॉल क्लब से होगा.
Yes, and now we have reached that section wherein we remember all those greats who are associated with today's date. And we start off with Robert Lee Frost, who passed away on this day in 1963. He was an American poet, known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech, Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. Frequently honored during his lifetime, Frost is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry.
आज पुण्यतिथि है जाने माने भारतीय अभिनेता अरविंद जोशी की. उनका जन्म 5 अगस्त 1929 को पुणे में हुआ था. उनके पुत्र शर्मन जोशी भी हिंदी फिल्म जगत में मशहूर अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं. अरविंद जोशी ने कई हिंदी सीरियल में भी काम किया था. अरविंद जोशी ने फिल्म अपमान की आग और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई थीं. हिंदी सिनेमा के साथ साथ गुजराती नाटकों में भी अरविंद जोशी ने काम किया. उनकी 2 संतान हैं, जिनमें बेटे का नाम शर्मन और बेटी का नाम मानसी जोशी है. अरविंद जोशी ने कई हिट गुजराती फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पहचान गुजराती नाटकों में अभिनय करने और गुजराती नाटकों के निर्देशक के तौर पर बनी.
अरे क्यों भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है?
चावड़ी रानी के सगे भाई होने के बाद भी तुमको ये पता नहीं है कि जूनागढ़ के सर पे डर का वातावरण है?
डर? किस बात का डर?
गुजरात का दुर्लभ राज कब जूनागढ़ पर चढ़ाई कर दे वो कुछ नहीं कह सकते. उसके लिए हमें सावधान होना चाहिए.
तो उनसे
Yes, an Oprah Gail Winfrey was born on this day in 1954, also known mononymously as Oprah. She is an American talk show host, television producer, actress, author, and media proprietor. She is best known for a talk show, The Oprah Winfrey Show, broadcast from Chicago, which ran in national syndication for 25 years, from 1986 to 2011. Dubbed the Queen of All Media, she was the richest African-American of the 20th century and was once the world's only black billionaire. By 2007, she was often ranked as the most influential woman in the world.
In life, you see yourself reflected in other people's stories. It's why, as a little black girl growing up, I was always looking for anybody that kinda looked like me. There were no black people on a billboard or on television or in the media.
I'm Oprah Winfrey, and welcome to the very first National Oprah Winfrey Show!
You're looking to find yourself. I was a news anchor woman. I never felt comfortable in my own skin.
And you can watch that landing live right here on Channel 7.
I always.
Yes, that was a snippet of an interview with Oprah Winfrey, which you were listening, listeners.
आग पानी से डरता हुआ मैं ही था, चांद की सैर करता हुआ मैं ही था, सर उठाए खड़ा था पहाड़ी पे मैं, पत्ती पत्ती बिखरता हुआ मैं ही था. मैं ही था उस तरफ जख्म खाया हुआ, इस तरफ वार करता हुआ मैं ही था. जाग उठा था सुबह मौत की नींद से, रात आई तो मरता हुआ मैं ही था. मैं ही था मंजिलों पे पड़ा हांफता, रास्तों में ठहरता हुआ मैं ही था. मुझसे पूछे कोई डूबने का मजा, पानियों में उतरता हुआ मैं ही था. मैं ही था अलवी कमरे में सोया हुआ और गली से गुजरता हुआ मैं ही था. ये रचना थी मशहूर शायर अहमद अलवी की. आज उनकी पुण्यतिथि है. उनका जन्म 10 अप्रैल 1927 को हुआ था. वे उर्दू के प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार थे. उनके एक कविता संकलन चौथा आसमान के लिए उन्हें वर्ष 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
Yes, and Donald Walbridge Shirley was born on this day in 1927. He was an American classical and jazz pianist and composer. He recorded many albums for Cadence Records during the 1950s and 60s, experimenting with jazz with a classical influence. He wrote organ symphonies, piano concerti, cello concerto, 3-string quartets, 1-act opera, works for organ, piano and violin, a symphonic poem based on the 1939 novel Finnegan's Wake by James Joyce, and a set of variations on the 1858 opera Orpheus in the Underworld. Let's listen in to his hit composition, What a Boy. And John Lincoln Froste was born on this day in 1918. He was an American stage, film, television actor, producer, narrator, drama teacher and philanthropist whose career spanned 6 decades. He also appeared as a guest on several talk and variety shows and as a panelist on numerous game shows.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।